आगे देखेंगे। यहाँ से अब मजलिस के कुछ आदाब है, टॉपिक वही है जो पीछे से मुनाफिकीन का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का हुसन ख़राब करना चाहते थे, दिल में बुग़स लिए हुए चूँकि आते थे ऐसी मजलिसों में, और जब देखते कि लोगों के दिलों पर बहुत असर हो रहा है कुरान का और अल्लाह के नबी की बात का, तो फिर कुछ अजीबो गरीब काम करते थे जिससे महफिल का माहौल है वो ख़राब हो। आयत नंबर 11 से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस, ए ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाए कि आने वालों के लिए जगह कुशादा कर दो मजलिस में, तो क्या करो? फफसहू यफसहिल्लाहु लकुम, तो कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी कर देगा। पहली बात, यहाँ आम मुसलमानों को ख़िताब किया गया, मिल बैठने के आदाब सिखाए जा रहे हैं, जिन पर अमल करने से आपस में मोहब्बत भी आती है और एक दूसरे का एहतराम भी पैदा होता है, और इसी तरह एक बंदा कितना बड़ा दिल रखता है उसका इजहार भी होता है। तो लिहाजा जब भी कोई किसी मजलिस में जाए तो दूसरे लोग जो वहाँ इंतजाम चला रहे हैं, अगर वो किसी से कहें कि अलग हो जाओ, तफस्सहू का लफ्ज़ फसाहा से है, उर्दू में इस लफ्ज़ को हम फसाहत के नाम से जानते हैं, स्वाद के साथ होता है लेकिन मानी वही है इधर, कि खुले हो जाओ, थोड़ी सी जगह बना दीजिए तो कर लो, अल्लाह तुम्हारे अंदर वसत पैदा कर देगा। दूसरी बात, वह इज़ाक़ीलन शुजू, जगह बनानी तो दूर की बात, कभी कभी पहले से बैठे हुए को कहा जाता है कि आप खड़े हो जाइए, यानी ये जगह खाली कर दें, तो क्या करो? फ़न शुजू, तो खड़े हो जाया करो। नशाजा से क्या होगा इस खड़े होने से? तुम तो सोचते हो कि तुम्हें उठा दिया, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुमसे ज़्यादा दूसरों को अहमियत दे दी, हालांकि अगर तुम्हारे अंदर कोई खूबी होगी तो यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला इनके जो तुम में से ईमान ले आए हैं, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिनको इल्म दिया गया दरजात को बुलंद कर देगा। यानी यहाँ वक्ती तौर पे उठा देने से किसी की बेइज्जती, किसी की इज्जत नहीं होती, असल इज्जत जो मिलती है वो ईमान और इल्म की वजह से मिलती है। और वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो इससे खूब आगाह है। ये पहला हुक्म है मजलिस के आदाब के सिलसिले में मुसलमानों को बताया गया। और इसमें कहते हैं कि एक ख़ास वाक़या भी था कि एक मौके पे कुछ लोग जो थे वो आए मजलिस में, नबी सल्लम की कोई महफिल थी, लेकिन कुछ लोग वहाँ से उठे नहीं, यानी उनको देखकर या जगह ना बनी। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत पढ़ के सुना देती हूँ, मुस्नद अहमद में भी है, अब्दुल्ला बिन उमर से, नबी सल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह से उठाकर उसकी जगह न बैठे, बल्कि मजलिस में कुशादगी पैदा करके आने वाले को जगह दिया करो, क्योंकि इससे आने वाले के दिल में खुशी महसूस होती है कि हम जिस जगह गए हैं दूसरे लोग हमें देखकर खुश हुए हैं। असल में ये बात सिर्फ नबी सल्लम की महफिलों तक नहीं है, हर महफिल का यही काम होना चाहिए, लेकिन दीन के नाम पे जो महफिलें होती हैं उसमें इस बात का इजहार ये बताता है कि दीन वालों के दिल बहुत खुले होते हैं। तो आप देखिए कि जब भी कोई आता है तो उसका दिल चाहता है ना कि मुझे इज्जत दें, कोई मेहमान आए घर में और आप अपनी जगह से टस से मस ना हो तो शर्मिंदा हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं क्यों आ गया या मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। फिर दूसरी बात यह है कि आप किसी जगह दीन के नाम पे ही क्यों ना जमा हुए हों, अब ये भी नहीं कि सभी आने वालों को देख देख के आप खड़े होते जाएं, ये एक ख़ास माहौल और एक ख़ास नज़र की बात है, और इसमें दीन के इंतजाम करने वालों को भी मैसेज नज़र आ रहा है कि किसी को अगर बुलाओ उठाओ तो इज्जत से बुलाओ। बस दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग पहले से मौजूद हैं वो तो रोज़ ही आते हैं, बाद में नए लोग आते जा रहे हैं, और ऐसा अमूमन तब होता है जब पब्लिकली कोई प्रोग्राम होता है, कोई दावत है, कोई स्पेशल इन्विटेशन पे लोग आए हैं। अब अगर स्टूडेंट्स जो आते ही शुरू में, ऑफकोर्स उनको शुरू में ही आना है, आते ही उन्होंने एक बहुत अच्छी जगह सेट करके रख ली, शुरू की लाइनों में बैठ गए, चेयर टेबल्स ले लिए, अब इतने में गेस्ट आ गए, गेस्ट के लिए चेयर ख़त्म हो गई, डेस्क हैं या खाली जगह रखी हुई है, या दूसरी सूरत क्या होती है कि उनको करीब बिठाने के लिए ताकि वो ज़्यादा फोकस होकर सुने, जो रोज़ सुनता है वो कहीं भी बैठ के सुने उसको आदत होती है, लेकिन जो नया आता है उसको बजाय इसके कि बिल्कुल पीछे लिसनर्स को बच्चों के साथ डाल दिया जाए, उनको आगे लगाना चाहिए। इसलिए मैंने जब भी कभी कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर इंस्ट्रक्शंस में बात कही है कि लिसनर्स की चेयर्स करीब रखें। ठीक है आप रेगुलर स्टूडेंट्स को दें मौका, लेकिन अगर चेयर्स रखनी है तो वहाँ ऐसी जगह पे रख दें, मसलन बाज़ दफ़ा स्टेज के सामने नहीं लेकिन साइड पे जगह होती है, या बिल्कुल कुछ डेस्क लगाने के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, तो तो लिसनर्स को इज्जत देनी चाहिए, गेस्ट को, खास तौर पे जो गेस्ट कभी कभार आपके आते हैं, ताकि वो आगे आए और बैठे। बाज़ दफ़ा बड़ी बेदर्दी से उठा लिया जाता है, उठे उठे, ये रेगुलर्स की जगह है, इंतहाई बेअदबी की बात है। इसी तरह आप देखिए कि हमारे यहाँ शादियों में इस चीज़ को कितना लोग बड़ा समझते हैं कि जो समझाने वाले हैं या ससुराली रिश्तेदार आएंगे, उनकी आगे के डेस्कों पर रिजर्व का टेबल लगा होता है। अब कोई और आके बैठ जाए तो कुछ लोग उठते, नहीं जी उठिए, ये हमारे मेहमानों के लिए जगह है। पहली बात है कि बाशऊर होना चाहिए इंसान को। इंसान जितना तालीम याफ्ता होता है उतना हसास होता है, इशारा भी समझता है, क्योंकि उसको ये चीज़ बहुत बड़ी लगती है कि कोई उसके साथ ऐसा करे तो वो उसी चीज़ को अपनी ज़ात पे ले लेता है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी वक्त किसी को इंतज़ामी ज़रूरत से उठाना पड़े तो डायरेक्ट कहने की बजाय इनडायरेक्ट बात की जा सकती है, आप यहाँ ठीक बैठे हैं, इधर है, मैं आपको थोड़ा और जगह बताती हूँ, यहाँ बैठ जाएँ, आपको करीब बैठते हैं। यानी बजाय इसके कि अगले को ये लगे कि मुझे इसलिए उठाया जा रहा है कि मेरी जगह दूसरा आए, उस जगह से और चाहे कम बेहतर जगह हो, लेकिन फीलिंग उसको ये आनी चाहिए कि मुझे इज्जत के साथ यहाँ से उठाया हुआ है। फिर दूसरी बात आप देखिए कि यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, इसको तो हाईलाइट कर लें, अल्लाह बुलंद करेगा तुम में से, बुलंदियाँ देगा, रफ़ाए दरजात इल्म और ईमान के साथ होते हैं, बुलंदी मर्तबा। एक ईमानदार शख्स नादार और मुफलिस ही क्यों ना हो, काफिर रईसों से बेहतर है, अल्लाह सुबहान तआला इसका दर्जा बुलंद करते हैं और उसको करने के लिए कहते हैं। होता क्या था कि बाज़ दफ़ा इस तरह के हालात हो जाते थे कि जिसमें एक तरफ एक मुखलिस सहाबी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल ही कभी कभार आने वाले हैं। सूरत आबसा में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद देखेंगे। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि ऐसे हालात में इस बात का यकीन रखो कि बुलंदी उसको मिलेगी जिसके अंदर ईमान होगा। मत सोचो कि थोड़ी देर के लिए दूसरों को जगह देने से तुम्हारी इज्जत कम हो गई, तुम्हारा दर्जा गिर गया, तुम्हें मजलिस से उठा दिया गया, तुम्हारी जिल्लत हुई। अगर तुम बड़े दर्जे करना चाहते हो, ऊंची कुर्सी पे बैठना चाहते हो, स्टेज पे बैठना चाहते हो, तो उठो, मेहनत करो, पहले अपने अंदर ईमान लाओ, फिर इल्म लाओ। एक हदीस बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है कि अल इल्मो इल्म अपने साहिब की शान को बढ़ा देता है। जब इंसान तालिब इल्म होता है ना, तो हर लिहाज से ही उसको पस्त होना चाहिए, उसको अपने नफ्स को कुचलना है, उसको रातों की नींद कम करनी है, उसको खाना कम करना है, उसको वो सारे कपड़े लिबास उतार के संभाल देने चाहिए जो उसका वक्त लेते हैं, जिसको पहनने के बाद उसको बहुत कुछ मिलता है। और अमूमन जो संजीदगी से पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ, वो ऐसे ही करते हैं। अगर आप कहें ना कि सारे दुनिया के बीच और साथ करें और फिर साथ दीन संजीदगी से सीखे, नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक शादी से हो के आते हैं रात को, अगले दिन आप आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आ जाते हैं तो दिमाग ख़राब रहता है, वो चीज़ें जहन में रहती हैं। बस दफ़ा चंद घंटों की दावत से हो के आना आपको अगले कई दिन तक डिस्टर्ब करता है। बस दफ़ा सिर्फ आप 2 वीक के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, आने तक 2 महीने तक अपसेट नहीं होते। इंसान का जहन जो इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बनती है। अब होता क्या है कि जब आप इल्म के साथ इस तरह की चीज़ें लेते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, दावत में गए हैं तो बार बार दूसरों को ये कह कह के इल्म से दूर करते हैं, मेरा कल टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, मेरे टेस्ट बहुत होते हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे जाना है, करते करते कुछ भी नहीं, पढ़ना पढ़ाना कुछ भी नहीं, सिर्फ शोर मचाते हैं हम लोग कि जी टेस्ट है और हमें पढ़ना है। वहाँ लोगों का भी रंग में भंग डाल के आए, वो कहेंगे ये जीप दीन इनको सिखाया जा रहा है, हर वक्त पढ़ना पढ़ना है। जब इधर आते हैं तो वो कल रात की पार्टी की वजह से सोए से ही नहीं थे, ये नहीं था जी, पढ़ नहीं सकते, टेस्ट नहीं दे सकते, तैयारी अच्छी नहीं, ये नहीं वो नहीं, हर एक सोचे। देखिए अगर आप फोकस होके पढ़ेंगे ना, आप ज़रूर जलील होंगे। जलील में उर्दू वाला नहीं कह रही, जुल्ला अरबी में नरमी को कहते हैं, यानी ला जलूल में हमने पढ़ा था सूरत बकरा में। इल्म हासिल करते हुए बंदा जितना दरमांदा हो जाए, जितना भूखा रहे, इल्म पाने के बाद अल्लाह उसको उतनी ही इज्जत देगा। तालिब इल्म जो होते हैं ना, वो किसी भी जगह के हों, आप देखिए कि अक्सर स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को पूछे तो उनको अपने टीचर्स पे बड़ा फ़ख्र आ रहा होता है, बड़ा रश्क आता है कि ये देखें कितनी इनकी इज्जत है, हमें इतना पढ़ना है, इनको तो पढ़ना नहीं पड़ता। हालांकि उनको ये नहीं पता कि 2 घंटे पढ़ाने के लिए 6 घंटे पढ़ना पड़ता है। आप टेस्ट ना दें, आपकी मर्ज़ी, आप तो कह देंगे हमने नहीं देना, जिन्होंने पेपर बनाना है उनको सुबह में बनाना पड़े, रात को उन्होंने तो बनाना, जिन्होंने उसको चेक करना है उनको तो चेक करना ही है, ग्रेडिंग करनी है उनको तो करनी है। तो लिहाजा अगर कोई चाहता है कि उसको इल्म की वजह से इज्जत मिले, तो उसको पहले इल्म हासिल करने के दौरान अपनी सारी अकड़ ख़त्म करनी पड़ेगी, उस्ताद के इशारों पे इस तरह वो चले कि जैसे कोई खुद कार चीज़ चलती है, ऑटोमेशन जो होती है, कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर चाहते हैं तो, अगर इल्म लेना चाहते हैं और अड़ी हो, एक छोटे से नुक्ते पे जो सोच अटकी हुई है ना कि टेस्ट दो क्यों है हफ्ते में, तो इससे सारी तफसीर का हुसन भी जाएगा, पढ़ना बढ़ाना भी कुछ नहीं होगा। नहीं मुझे तो भूख लगी थी इस वक्त टेस्ट क्यों है, नहीं मिलेगा कुछ। बल्कि तोड़ा करें अपनी अना को और गिराएं। एक कॉल है किसी का कि इल्म तुम्हें अपना कुछ भी नहीं देता जब तक कि तुम अपना सब कुछ उसको नहीं दे देते। नींद, अना, अकड़, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि उसके बाद वो सब कुछ मिलेगा। आप देखिए कि हज़रत अबू हुरैरा क्या थे, गुलाम थे, खिदमतकार थे, काफलों के आगे आगे चलते थे, ज़मीन साफ़ करते, लोग वहाँ बैठते, फिर उनके जानवरों को बांधते, फिर लोग उठ जाते तो उनकी गिरी पड़ी चीज़ें उठाते। लेकिन बाद में लोग उनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते थे। किस चीज़ ने अबू हुरैरा को इज़्ज़त दी? इल्म ने दी। पहले ईमान, खाली इल्म कुछ नहीं देगा। लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक एक तर्जमे को आप रट लें, कुछ नहीं मिलेगा। आप ग्रामर में फरफर हो जाएं, कुछ नहीं मिलेगा। आप इंग्लिश, उर्दू, नोश जो मर्ज़ी बोलें, कुछ नहीं मिलेगा। पहला जो सबक लेना होता है वो ईमान का लेना होता है, मार्फत, अल्लाह से ताल्लुक, कुर्ब। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद इल्म कैसे दिल में जाता है, फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कुछ लोग इस तरह से होते थे कि अपनी जगहों से हटते ही नहीं थे, देर तक मजलिस में बैठते, आखिर वक्त तक बैठते, वक्त पूरा हो जाता फिर भी ना जाते। इससे नबी सल्लम को तकलीफ़ होती थी, आपके आराम में खलल पड़ता था, क्योंकि मस्जिद नबी ही के साइड पे ही आपके हुजरे थे, जिसकी वजह से फिर आपको जाके आराम करना होता था। अब लोग जा रहे हैं तो नबी सल्लम को लोग रोक लेते थे, जिसके बाद ये हुक्म उतरा कि उठो, उन शुजू फन शुजू, जाओ भाई अब घर जाओ, अब अगली नमाज़ पे आना, अब अगले वक्त पे आना। तो इससे अल्लाह ताला ने एक अदब भी सिखा दिया कि वक्त से पहले आना चाहिए और वक्त के बाद नहीं रुकना चाहिए। लिख लें इस बात को, किसी जगह भी ज़िंदगी में जाएं, दावत हो, शादी हो, मंगनी हो, कोई फंक्शन है, वक्त से थोड़ा सा पहले आ जाएं ताकि ज़हनी तौर पे तैयार हों, वहाँ आके बैठे इंजॉय करें, पढ़ें, सीखें, जो भी काम करें, और जो ही ख़त्म हुआ अल्लाह हाफिज़। सूरह अल-अहज़ाब में हमने डिटेल से पढ़ा कि आपके वलीमे के मौके पर लोग रात देर तक बैठे रहे, जिससे आपको तकलीफ़ हुई, लेकिन शर्म के मामले से आपने इस तरह से नहीं किया। इसी तरह आप देखिए कि जो इमाम की जगह होती है ना, जैसे इमाम का मुसल्ला है, मस्जिद है, उसमें इमाम की ड्यूटी है, वो मौजूद भी है, किसी दूसरे को वहाँ जाके उसकी जगह पे नमाज़ नहीं पढ़ानी चाहिए, ये किस्म की चोरी होगी। बाज़ जगह कुछ चीज़ें असाइंड होती हैं, कुछ कुर्सियाँ असाइंड होती हैं, कोई स्टाफ की कुर्सी है वहाँ नहीं बैठना चाहिए, कोई स्टाफ का अगर टॉयलेट है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई टीचर्स के रूम होते हैं, कोई मीटिंग रूम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हालात के साथ साथ जहाँ होती हैं, इसके लिए ज़हनी तौर पे पहले से बंदे को तैयारी करनी चाहिए कि उस जगह को जिसके लिए मेज़े रखे वो रखो। बाज़ लोग कहते हैं नहीं हम तो इसी को यूज़ करेंगे, कुछ लोग होते हैं ना ज़हनी तौर पर बहुत बड़े होते हैं, पूरा कुरान पढ़ लेते हैं फिर भी दिल की बड़ाई नहीं जाती, वो हमेशा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चाहते हैं, हमें बड़ा बनाया जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बड़ा बनना है तो पहले ईमान और फिर उसके बाद इल्म। कई मिसालें मौजूद हैं, अगर वक्त होता तो मैं आपको इनकी कहानियाँ सुना देती कि इल्म ने लोगों को कैसे इज्जत दी, गुलामों को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी इज्जत दे दी, यतीम बच्चे जो थे उनको अल्लाह ताला ने कहाँ चुन लिया। कई ऐसी औरतों के नाम मौजूद हैं हिस्ट्री में कि जिन्होंने इल्म पे अपना सब कुछ लगा दिया और बाद में इल्म ने उनको दुनिया की भी दौलत दी और आखिरत भी अल्लाह के यहाँ महफूज है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह ताला हर उस चीज़ से जो तुम अमल कर रहे हो उसको खूब देख रहे हैं। ये था पहला हुक्म, बात वाज़े है, वक्त पे आओ, वक्त पे जाओ, जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाओ, जगह बनाओ, थोड़ा सा किसी को दे के खिसको। इस पर एक छोटा सा लेक्चर है मजलिस के आदाब, 15-20 मिनट का है, आदाब ज़िंदगी एक बुक है, उसमें से बेस करते हुए मैंने कहीं टॉक्स दी थी, तो उस पे से है, आप मज़ीद भी सुन सकते हैं मजलिस के आदाब को, इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा होता है। आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, एटिकेट्स हैं, सीधा बैठना, लाइनें बनाना, टेक ना लगाना, आगे बीच में खलल छोड़ना, ये सब कुछ करना, ये चीज़ें हकीकत में बहुत गहरा रब्त रखती हैं इंसान के कामों के करने की रफ्तार पे। इसके बाद अब एक दूसरा हुक्म है, पढ़ते हैं दोनों आयतें, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लायो, यहाँ आप ज़रा दिल पे महसूस कीजिए इस लफ्ज़ को, मदनी सूरत है ना, तो बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह ताला ईमान वालों को सिखा रहे हैं, और इस वक्त आप अपने आप को देख के कहें कि मैं हूँ वो ईमान वाली जिसको अल्लाह ताला ये पुकार रहे हैं। क्या करो? इज़ा ना जई तुमुर रसूला, जब तन्हाई में बात करना चाहो रसूल मुकर्रम से, तो क्या करो उससे पहले? فقدموا بين يدي نجواكم صدقہ، تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، کیوں؟ ذالک خیر لکم و اطہر، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاک کرنے والی ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکو یعنی صدقہ دینے کا موقع نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ یعنی یہ پے نہ کر سکو، یہ پیسے نہ دے سکو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے پیچھے پھر ایک خاص ماحول ہے، اور وہ کیا کہ پچھلی بات ہی کی کنٹینویشن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ تنہائی میں بات کرنا چاہتے تھے، تخلیہ چاہتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی سے یہ بوجھ ہلکا کرے، تو اس پر رعایت نازل کر دی۔ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس کی مختلف وجوہات تھیں، تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ مدینہ کا ماحول نظر میں رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہے، ایک مصروف انسان ہے، آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ اب آپ کے ساتھ پرسنلی اگر ہر بندہ آ کے بات کرتا تو ممکن نہیں تھا کہ آپ اپنا کام کر سکتے، اس لیے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا، اللہ کے نبی اپنی طبیعت سے مروت کی وجہ سے اس کو رد نہ کرتے۔ اس طرح ہوتا کہ جس کا جی چاہتا آتا آپ کو کھڑا کر کے بات کرنا شروع کر دیتا، آپ اس کو موقع دیتے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وجوہات کیا تھیں اس حکم سے روکنے کی جو اگلی آیت میں آ رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کسی قبیلے کے شخص کو خسر پسر کرتا دیکھتے تو فوراً افواہ پھیل جاتی کہ کوئی نہ کوئی حملہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا، اتنا خطرہ تھا، ہر طرف سے جنگ لڑائی اس کی باتیں آتی تھیں، تو شیطان دل میں بات ڈالتا کہ دیکھو فلاں قبیلے کا حملہ ہونے والا ہے، اور اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں دی، جس کے نتیجے میں ہوتا کہتا کہ مدینہ ہر وقت افواہوں سے گرم رہتا۔ دوسری طرف ہوتا کہتا کہ لوگوں کی سرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ نبی یہ کیسے ہیں، یہ تو کانوں کے کچے ہیں، پیچھے ہم پڑ چکے اذن، یہ تو کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، یہ بات کہتے تھے۔ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ویک لگتی، حالانکہ ویک نہیں ہوتی، مومن کی تو شان ہی ہے کہ آپ اس کو دور سے دیکھیں تو وہ آپ کو سخت لگے، قریب سے آپ کو اس کو دیکھیں تو آپ کو وہ نرم لگے۔ اس کا دل اندر سے نرم ہوتا ہے، باہر سے وہ سخت ہوتا ہے، وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ باتیں کرنے لگے۔ ایک تیسری وجہ کیا تھی؟ امام قتادہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی بڑھائی جتانے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں باتیں کرتے تھے۔ یہ بھی بعض لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی لیڈر، کوئی بڑا، کوئی، ہم دنیا کی مثالیں تو نہیں دیتے، وہاں تو ایک پہلے اتنے سیکیورٹی کے پہرے ہوتے ہیں کہ صدروں وزیروں کے پاس کوئی نہیں جاتا، لیکن عموماً دیکھیے کوئی فیمس بندہ ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو لوگ صرف اس کے پاس آ کے اس لیے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے، ہمارے تو ان سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، ان کا فون نمبر تو میرے پرس میں ہوتا ہے، وہ تو میرے سیل پہ ہیں۔ تو اس سے بعض دفعہ لوگوں کے اندر ایک قسم کی اخلاقی برتری پیدا ہوتی جا رہی تھی دوسروں کے اوپر، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب ایسا نہیں کرو، فقدم بین یدی نجواکم صدقہ، فیس رکھ دی، مشورہ فیس کہہ لیا، کہہ دیا گیا کہ اب اس کے بعد جو بھی آئے گا کچھ فیس کرے۔ اب جب یہ آیت اتری تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے یہاں کوئی کہے کہ اس روم میں انٹری کی ٹکٹ رکھنی چاہیے، کتنی رکھیں؟ تو اب حکم تو آ گیا کہ اللہ کے نبی سے ملنا ہے، پہلے اپوائنٹمنٹ لو، پیسے پہلے جمع کراؤ، پھر تم ملنا۔ تو یہ اصل میں چینلائز کیا جا رہا تھا، وقتی حکم تھا صرف۔ تو حضرت علی سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دینار نہ رکھ لیں، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اچھی خاصی اماؤنٹ ہے، گولڈ ہے۔ تو حضرت علی کہتے کیا لوگوں میں اس کی قدرت ہے، یعنی یہ لوگوں کی سائٹ لے رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر نصف دینار۔ کہنے کا نہیں نہیں اللہ کے نبی، لوگ اتنا بھی نہیں دے سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم ہی بتا دو کتنا رکھیں۔ تو کہتے میں نے کہا بس ایک جو برابر سے، جو کا دانہ کیا ہوتا ہے، ناک کی کیل بھی نہیں آتی، کہا ایک جو برابر سونا رکھ دیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا انت لزہید، اے علی تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا، جو ابن جریر کی ترمذی کی روایت ہے۔ بہرحال ہوا کیا کہ حضرت علی ہی ایسے ہیں کہ جس کو اس حکم پہ عمل کرنے کا موقع ملا، جو ہی پیسے رکھے لوگوں نے باتیں کرنی چھوڑ دی۔ یہی تو حال ہے، آپ پے کر دیں چیز کے لیے، وہ خالی پڑی رہے گی، وہ کہیں گے अभी ख़त्म होनी है, फेंकनी है, तो इन्होंने खुद ही फ्री बांटते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसे रखे, लोगों ने बात करनी छोड़ दी। जब ट्रेनिंग हो गई, दो तीन चीज़ें हो गई, मुखलिस सहाबा जो थे उनकी ट्रेनिंग हो गई, मुनाफिकीन को खूब समझ आ गई कि अब हमें पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देना सबसे बड़ा मुश्किल लगता है मुनाफिक को, वो सब ठीक हो गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अशफ़क़ तुम, क्या तुम डर गए, इस हुक्म पे अमल करने से डर गए, क्या पैसे देने पड़ेंगे। अंतुक़द्दिमु बैन यदै नजवाकुम सदका, कि तुमको सरगोशी से पहले सदका देना चाहिए, तो फ़ैज़ लम तफ़लू व ताबल्लाहु अलैकुम, बस जब तुम ऐसा नहीं कर सके तो अल्लाह ने तुम पर नज़र करम फरमाई, लिहाजा अब ये तो ना करो, मैनेज हो जाओ। फ़ाक़ीमुस्सला तवातुस्सका तवाती उल्लाह व रसूलहू, बस अब तुम नमाज़ ठीक ठीक अदा किया करो, और ज़कात दिया करो, और ताबेदारी किया करो अल्लाह और उसके रसूल की। वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम अमल करने वाले हो। लिहाजा कुछ दिन के बाद ये हुक्म ख़त्म हो गया। जब लोग मैनेज हो गए, इस्लाम का वो हुक्म है जो सबसे थोड़े दिन तक नाफिजुल अमल रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मेरे सिवा किसी को इस आयत पर ना अमल करने का मौका मिला और ना क़यामत तक मिलेगा। ये जो पाबंदी के मशवरे के दिन थे, कहते हैं उन्हीं दिनों में मैंने अल्लाह के नबी को पेश किया 1 दिनार और मैंने आके मसला पूछ लिया, और उसके बाद ही ये हुक्म ख़त्म हो गया। और अब देखिए, यहाँ से सहाबे कराम की शान भी आपको दिखेगी कि वो अमल करना चाहते थे और उनको पता चलता था कि हम क्या करें। बल्कि एक रिवायत में भी यहाँ तक आता है कि हज़रत अली ने इस हुक्म पर अमल किया, सदका पेश किया, और याद रखिए ये सदका अल्लाह के नबी को नहीं जाता था कि आपका कोई अपॉइंटमेंट था, सदके में जाता था, ये सब कुछ भी डोनेट होता था, लेकिन लोग बहरहाल उस पर फिर मैनेज हो गए। तो रिवायत में आता है कि हज़रत अली ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ पैसे। पैसे दिए, नबी सल्लम से आके 10 मसाइल दरियाफ्त किए। लंबी सी रिवायत है जिसका खुलासा क्या है कि पूछा अल्लाह के नबी वफा क्या है, फरमाया तौहीद और तौहीद की शहादत देना। कहा फसाद क्या है, फरमाया कुफर और शिर्क। अर्ज़ किया हक क्या है, फरमाया इस्लाम कुरान, और जब भी तुझे यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत मिले। कहा हीला क्या है, तदबीर क्या है, फरमाया तरके हीला, यानी काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं। इसकी सनद का मुझे इतना यकीन नहीं, बहरहाल ये एक रिवायत ऐसी आती है कि हज़रत अली कहते हैं कि मैंने 1 दिनार देकर 10 मसले पूछ लिए, और इस तरह से ये हुक्म उसके बाद मनसूख हो गया और सब ठीक हो गए। इससे क्या पता चलता है कि लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए फ़ाइन रखने चाहिए, होने चाहिए फ़ाइन। कुछ लोग प्यार की मानते हैं, बाज़ लोग गुस्सा मानते हैं, और बाज़ लोग कुछ भी नहीं मानते। याद रखिए, कुरान पढ़ने के दौरान जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, वो सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर रहता है। ये अल्लाह की किताब होती है ना, हम इसके लिए जितने सच्चे होते हैं, पिछली सूरत में हमने कितने खूबसूरत तरीके से देखा, मुसद्दकीन सदका सिद्क की दलील है, कभी भी अपनी ज़ात को दूसरे के लिए तकलीफ़ देने वाली चीज़ ना बनाएं। कितनी जगह कोई आपके लिए परेशान हो, जैसे आप देखिए कि रोड पे जाते हैं, हर बंदा सुर्ख लाइट पे खड़ा होता है, अगर 2-4 बंदे भी उस हुक्म को तोड़ें तो कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे ना। हमेशा जब लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते तो सख्ती होती है, कोई सख्ती ना, मसलन ऑनलाइन क्लासेस टेक्स्ट खुला छोड़ दें, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन कोई आएगा वो उलट सुलट लिख के चला जाएगा, फिर हमें बंद करना पड़ता है, और जो ठीक लिखना चाहते थे वो भी नहीं लिख पाते। तो हमेशा ऐसे लोग दूसरों का हक मारते हैं, जब लोग खुद रूल्स को फॉलो नहीं करते तो दूसरे जो कर रहे होते हैं उनका भी उसमें बहुत हक जाता है। तो बहरहाल बताया गया कि अब नमाज़ें ठीक करो, अपने दीन को ठीक करो, नबी से बात करने का हुक्म जो था वो तो पूरा हो गया, इसके बाद अब तुम अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। और आप देखिए कि अदब सिखाया गया ना, फिर नमाज की बात की गई, ये नहीं कहा कि भाई इसको थोड़ा अब कर लिया तो चलो नमाज़ों की भी फिक्र ना करो, ये ना सोचो कि ये हुक्म मनसूख हुआ है तो कहीं नमाज़ें भी मनसूख ना हो जाएं। अब सवाल एक छोटा सा पैदा होता है कि भाई कितने दिन ये हुक्म रहा, हमें क्या, हम तो आज नहीं कर सकते अमल, लेकिन मिलता है, कोई कहते हैं 10 दिन, कोई कहते हैं 3 दिन, कोई कहते हैं 1 दिन तक भी रहा, लेकिन किसी सही रिवायत से हमें इस हुक्म की बात नहीं समझ आती। इससे भी ये बात पता चलती है ना कि अल्लाह ताला जो चाहे रखे, जो चाहे मनसूख कर दे, सब कुछ उसी का है और उसके हाथ में है। तो इससे कुरान के अल्लाह की तरफ से होने की भी दलील मिलती है। इससे पता चलता है कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से था, और ये जो हुक्म उतरा था ये फ़र्ज़ के दर्जे का नहीं था, बल्कि इस्तेहबाब, इस्तेहबाब कहते रिकमेंडेड, गुड, वेरी गुड, यानी अच्छे दर्जे का था। फिर आखिर में ये फ़ाकीम उस सलात से लेके कुछ इबादात की बात है, तो पता क्या चला कि फ़राइज़ और अहकाम की पाबंदी उस सदक़े का बदल बन जाएगी जिसे अल्लाह ने तुम्हारी आसानी के लिए माफ़ कर दिया। अब यहाँ से सूरत के आखिर तक यानी आयत नंबर 14 से 22 तक एक ख़ास ताल्लुक़ है मुनाफिकीन, वो ऐसे हैं कि जो इस्लाम के पर्दे में छुपे में, आइए देखते हैं। अलम तर इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, क्या तुमने नहीं देखा इन नादानों की तरफ जिन्होंने दोस्त बना लिया उस कौम को जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। ये कौन है? ये वो मुनाफिक हैं जो यहूद से दोस्तियां रखते थे मदीना में, मदीने के यहूद की तरफ जिन्हें मुनाफिकीन ने दोस्त बना रखा, तो उनकी तरफ इशारा है कि देखो इस्लाम मिल गया, अल्लाह ने इतना प्यारा इनको नेमुल बदल दे दिया, इसके बावजूद पिछली दोस्तियां इनकी जो कुफर बेस्ड थी वो नहीं छोड़ते, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, अल्लाह के नबी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात दोस्ती या ताल्लुकात के कई दर्जे होते हैं, रस्मकारी सब कुछ ठीक होता है, लेकिन इनकी हमदर्दियाँ भी बाज़ औक़ात उन्हीं के साथ होती थी जो इस्लाम को नुकसान देते थे, जो इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, लोगों को उससे रोकते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कभी इन नादानों को देखा कि उन लोगों से दोस्तियाँ करते हैं, ग़दीबल्लाहु अलैहिम। अच्छा, एक ये लफ्ज़ ग़दीबल्लाहु अलैहिम दलील बन गया किस बात की कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मखदूब में हम हमेशा जो तफसीर पढ़ते हैं किताबों में वो यहूद का भी नाम आता है, ये उसकी दलील बन गई। क्यों कहें कि यहूद पर गज़ब हुआ? ये टेक्स्ट बता रहा है कौमन गदीबल्लाहु अलैहिम, और भी बहुत सारों पे हुए, वो सारे भी उसमें आ सकते हैं, पिछली सारी कौमें जो अल्लाह के अजाबों से मारी गई वो सारी इसमें आती हैं, बंदर बनाए गए जिनके ऊपर तूफान आए, लेकिन टेक्स्ट के एतबार से यहाँ ख़ास तौर पर यहूद की बात है। मुनाफिक अपनी आंखों से साफ देख रहे थे कि इस्लाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, इसकी फतूहात का दायरा वसी हो रहा है, माल गनीमत की रेल पेल होने वाली है, अब दुनियावी फ़ायदे सब कुछ बहुत हैं। अब ऐसे लोग करते क्या थे कि अपना नाम इधर से भी नहीं कटाना चाहते थे और उधर से भी नहीं लगाना चाहते थे, दिली हमदर्दियाँ यहूद के साथ थीं, इन्हीं को दोस्त समझते, इन्हीं के मुखलिस थे, लेकिन नबी सल्लम से एक रस्मी ताल्लुक़ रखते। तो अल्लाह अपने नबी को बता रहे हैं कि मा हुम मिनकुम, देखो ये तुम में से नहीं है, बहुत सोच के इनके ऊपर ट्रस्ट करना, वला मिनहुम, और ना ये उनके रहे हैं अब। भला क्यों? कि वो अब इनको कबूल नहीं करते, वो कहते हैं तुम हमें छोड़ के अल्लाह के नबी के साथ लग गए हो, भाग जाओ, इधर आते हैं तो ये उनकी बातें करते हैं। इनका हाल क्या है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दो कश्तियों का सवार इधर से उधर उधर से इधर, दोनों जगह जाके अपनी सच्चाइयाँ पेश करने के लिए, व यहलिफून अलल कज़िब, ये जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं, वहुम यालमून, ये खूब जानते हैं इसको। इससे मुराद राह और रस्म रखने वाला शख्स नहीं है, इससे मुराद ये भी नहीं है कि मिसाल है कि अगर कोई मुसलमान है तो किसी यहूदी से जाके इस्लाम करता है या किसी काफिर से कोई बात कर लेता है तो वो है, हरगिज़ नहीं है, याद रखिए। इससे मुराद आप ये नहीं ले सकते कि आम तौर पर नाम नॉन मुस्लिम से ताल्लुक़ रखे, ना उनसे मिले, ना खाएं, ना पिए, हम पीछे इस पर डिटेल से बात कर चुके कई बार कि ताल्लुकात के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, सबसे हल्का दर्जा मवासात का होता है, हमदर्दी आती है आपको उन पर, कोई बात नहीं, आप उनकी मदद करें, बूढ़े हैं, गरीब हैं, जलजला आ गया, कुछ भी हुआ खूब मदद कीजिए, कोई हर्ज नहीं। दूसरा ताल्लुक़ होता है मदारात का, मदारत खातर मदारत, कुछ लें कुछ दें, कोई हर्ज की बात नहीं है, इसमें भी इंसान उनके साथ अच्छा मामला कर सकता है। तीसरा होता है मामलात का, कारोबार आप करें, जॉब उनकी करें, वो आपकी करें, कोई हर्ज नहीं, सिर्फ एक चीज़ जो है वो नहीं कबूल, और वो क्या है कि तवल्लो, विलायत का दर्जा नहीं है, इसी को बिताना कहा गया, इसी को विलायत कहा गया, इसी को बिताना कहा गया, और कई नाम मुख्तलिफ हैं, कि दिल के साथ ना उनकी मोहब्बत हो, इनके नज़रियात, इनके अकायद वो नहीं अच्छे होते। असल बात ये कि ऐसा बंदा सिर्फ अपनी गरज़ का बंदा रह जाता है, ये लोग अपनी गरज़ को चाहते हैं, मुसलमानों से पूरी हुई तो मुसलमानों से जुड़ गए, कुफर से फ़ायदा मिला तो उस दिन जाके कुफर से ले लिया। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं अद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, तैयार कर रखा है अल्लाह ने इनके लिए सख्त अज़ाब, इन्नहुम सा अमा कानू यामलून, बेशक ये बहुत बुरे काम करते हैं, ये सोच तो ये रहे थे कि दो तरफ के बेनिफिट लेंगे, ड्यूल बेनिफिट्स लेने वाले, ड्यूल सिटीजनशिप्स लेने वालों को मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है ना, इधर के रहे ना उधर, किसी ने इनकी बात ना मानी। नबी सल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल उस भेड़ की सी है जो दो रेवड़ों में सरगर्दां फिर रही हो, इसे ये ना मालूम हो कि इसने किस रेवड़ के पीछे जाना है। अल्लाह हुक्म। इसी तरह एक मौके पे नबी सल्लम अपने हुजरे में थे, चंद सहाबत भी वहीं थे। आपने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक आदमी आएगा जिसका दिल बड़ा सख्त है और जो शैतान की आंखों से देखता है। इतने में अब्दुल्ला इब्ने नब्तल झट आ गया। इसकी आंखें नीली, कद छोटा और दाढ़ी पतली थी। नबी सल्लम ने फरमाया, तू और तेरे साथी क्यों गालियां देते रहते हैं? इसने कसम खाई कि इसने कभी गाली नहीं दी। इसके साथी आए, उन्होंने भी कसमें खाई, हालांकि वो जानते थे क्या कि वो यहलिफून अलल कज़िब वहुम यालमून, झूठी कस्में खा रहे थे। अल्लाह ने ऐसे लोगों को शदीद अजाब की बात दी